कृष्णा, सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के रविवार के श्रीमद् भागवतम क्लास में। भगवान श्री कृष्ण के गोवर्धन लीला करने के आठ कारण, तीसरा गोवर्धन पूजा का उद्घाटन करने हेतु भगवान ने ये गोवर्धन लीला रचाई, और इसमें हम पिछले कई रविवारों से इस विषय पर हैं, भगवान की नजरों में पूजनीय कौन है। यहाँ भगवान ने गोवर्धन को पूजनीय माना है इन दो कारणों के वजह से। तो हम रामायण से प्रसंग लिए, विश्वामित्र मुनि और वशिष्ठ मुनि की, वाल्मीकि मुनि ने रामायण में ऐसे ऐसे पात्रों के विषय में वर्णन किया है जिन्होंने अपने जीवन से, अपने उदाहरण से अपने आप को पूजनीय बनाया है। तो हम फिफ्टी टू लेसन्स थे, तो मैंने सोचा कि नंबर उसको ऑस्पिशियस कर देते हैं। घबराइए मत, आज का आखिरी सत्र है हमारे इस सीरीज का, वशिष्ठ विश्वामित्र। तो एकादशी है इसलिए मैंने सोचा 56 कर देते हैं उसको। तो विश्वामित्र मुनि और वशिष्ठ मुनि, ये दोनों जो ऐसी हस्ती रामायण में, जैसे हमने कहा कि जो एक समय एक दूसरे का आदर सत्कार कर रहे थे, इनकी मित्रता की शुरुआत हुई एक दूसरे के आदर सत्कार से, और फिर विश्वामित्र मुनि कट्टर दुश्मन, ज्ञानी दुश्मन बन गए वशिष्ठ मुनि के, और अंत में हम देखते हैं कि ये दोनों प्रभु श्री राम के गुरु बनते हैं। तो हम इस पूरे प्रसंग में वहां तक पहुंचे कि विश्वामित्र मुनि, जिन्होंने हार नहीं मानी कि वो वशिष्ठ मुनि की तरह ब्रह्मऋषि बनना चाहते थे। शुरुआत इसकी हुई कि उस गाय को जब उन्होंने देखा कि उस गाय के अंदर ऐसी अद्भुत शक्ति, ऐसा ऐश्वर्य कि विश्वामित्र मुनि कल्पना नहीं कर सके कि ये गाय एक साधारण से तपस्वी की कुटिया में क्या कर रही है। ये मेरी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो वहां से शुरुआत हुई विश्वामित्र मुनि के मन में वशिष्ठ मुनि के प्रति ईर्ष्या, और फिर वो तपस्या करने निकले, भगवान शिव जी को प्रसन्न किया, बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र हासिल किए, परंतु फिर भी ब्रह्मऋषि वशिष्ठ के सामने, उनके ब्रह्म दंड के सामने, भगवान महादेव शिव जी के अस्त्र शस्त्र, यहां तक कि ब्रह्मास्त्र भी कुछ न कर सका उनका। और फिर अब वो निकलते हैं तपस्या करने के लिए दक्षिण दिशा में ब्रह्मऋषि बनने, कि वशिष्ठ मुनि यदि इतने प्रभावशाली हो सकते हैं क्योंकि वो ब्रह्मऋषि हैं, क्योंकि वो पद उन्हें प्राप्त हुआ है, तो मुझे भी अब वो पद चाहिए। और ब्रह्मा जी की आराधना वो प्रारंभ करते हैं, परंतु ज्यादा से ज्यादा ब्रह्मा जी उन्हें उस समय केवल राजऋषि का पद देते हैं, जो कि विश्वामित्र मुनि के लिए एक बहुत घोर अपमान था। राजऋषि का पद भी बहुत ऊंचा होता है। तो ब्रह्मा जी बोले कि भाई, तुम्हारी योग्यता अब तक तुम जो हासिल किए हो, राजऋषि तक तुम्हें मैं दे सकता हूं, उसके आगे नहीं। तो वो लगे हुए हैं ब्रह्मर्षि बनने, और हमारे त्रिशंकु उनका आगमन होता है इनकी तपस्या के बीच। हमने पूरी त्रिशंकु की कथा सुनी, त्रिशंकु, इंद्र, विश्वामित्र मुनि, बाकी सारे ऋषि मुनि, वशिष्ठ मुनि, उनके पुत्र। ये एक ऐसी कथा है जिसके अंदर ऐसे ऐसे ट्विस्ट और टर्निंग पॉइंट्स हैं कि हमारे रोमांच खड़े कर दें। तत्पश्चात जब विश्वामित्र मुनि असफल होते हैं दक्षिण दिशा में, तो वो निकलते हैं पश्चिम दिशा में कि ये जगह में प्रॉब्लम है, और पश्चिम दिशा में वहां पर वो अपनी तपस्या कर रहे हैं ब्रह्मर्षि बनने के लिए। तो वहां पर भी क्या होता है, सुनशेप, उनके स्वयं का भांजा वो आखड़ा होता है और फिर विक्षेपित हो जाते हैं विश्वामित्र मुनि, और सुनशेप उनकी मदद करते हैं। तो हम वहां से लेंगे कि पिछली दफा हमने जो लास्ट के दो स्लाइड्स लिए थे, 41st लेसन। तो अम्बरीश महाराज जो कि अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, उनका घोड़ा इंद्र ने चुरा लिया, अश्व चुरा लिया, और फिर वो उनके पुरोहित उनसे कहते हैं कि जाकर या तो ऐसा ही अश्व ढूंढो या कोई ऐसा इंसान ढूंढो जो कि स्वीकृति दे बलि चढ़ने के। तो वो ऋचिक मुनि से मिलते हैं जिनके तीन पुत्र, उनमें से जो मजला वो सुनशेप। तो ये तीनों क्या दर्शाते हैं, अम्बरीश रिप्रेजेंट्स कॉम्पिटिटिव लाइफ, यू डाई फॉर माय सेक। सुनशेप रिप्रेजेंट्स कोऑपरेटिव लाइफ, बोथ यू एंड आई शुड प्रॉस्पर। विश्वामित्र रिप्रेजेंट्स सेवा भाव एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, मे यू प्रॉस्पर बाय माय हेल्प। तो सुनशेप, बहुत विशेष इनका ये नाम, कुत्ते की पूंछ। सुनकर हमें हंसी आ रही है, परंतु ये एक बहुत आदरणीय नाम माना जाता था उस जमाने में, क्योंकि देवराज इंद्र का ये कुत्ता, पेट डॉग, पालतू कुत्ता, जिसका नाम देव सुनो, पिछले दफा हमने सुना देव सुनो, जब भी कोई ग्रंथ का अध्ययन करता या ग्रंथ बांचते समय यदि वो दिल से नहीं कर रहा है तो भौंकता, और ऐसे कुकुर कुत्ते की जो पूंछ है वो है सुनशेप। एक दंपति, उनको जुड़वा बच्चे हुए, तो उन्होंने नाम रखा तारा सितारा। अगले साल फिर जुड़वा बच्चे हुए, तो अब उनका नाम रखा पीटर रिपीटर। उसके अगले साल फिर जुड़वा बच्चे हुए, तो अब नाम रखा क्लाइमैक्स एंटी क्लाइमैक्स। फिर हुए, फाइनली वो तंग आ गए और उन्होंने फाइनली लास्ट जुड़वा बच्चों का नाम रख दिया स्टॉप, फुल स्टॉप। तो पता नहीं आजकल क्या नाम रखा जाए किसी का। जैसे लंदन में मैंने देखा एक हमारे डिवोटी, उन्होंने उनके घर पर दो बिल्लियां पाल रखी, तो दो बिल्लियों का नाम रखा है धोती कुर्ता। ये सच बात मैं बता रहा हूं, धोती कुर्ता, देखो मेरा धोती कुर्ता जा रहा है, जब बिल्लियां घर से बाहर जाती। एक डिवोटी ने अपने बेटे का नाम रखा है खिचड़ी, क्योंकि उनको खिचड़ी बहुत पसंद है, तो अपने बेटे का नाम खिचड़ी रख दिया। और जब वो पैदा हुआ था तो फीस्ट में खिचड़ी बांटी गई थी सबको। तो आजकल पता नहीं क्या नाम होंगे, खिचड़ी, इडली, उसल। तो यहां सुनशेप वो क्या लेसन हमें सिखा रहे हैं, दोज हुम यू थिंक आर योर्स विल बिट्रे यू व्हेन यू नीड देम दी मोस्ट। स्वयं सुनशेप के माता पिता, उन्होंने अपना सही प्रेम दिखा दिया, और एल्स वी कैन से दैट देयर रियलिटी वॉज एक्सपोज्ड व्हेन देयर वॉज अ क्राइसिस सिचुएशन व्हेन दे हैड टू सैक्रिफाइस। समटाइम्स द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड पर्सन माइट कम फॉर योर रेस्क्यू। यहां पर इनके लिए जो कभी ये कल्पना भी नहीं किए थे कि उस जंगल में वो अपने मामा श्री विश्वामित्र मुनि से उनकी भेंट होगी और विश्वामित्र मुनि उनके रेस्क्यू के लिए आएंगे। फाइनली उनको जो दो मंत्र दिए गए, उन मंत्रों के सहारे अब सुनशेप वो अपने आप को बचा लेते हैं। तो वो निर्णय लेते हैं कि यदि ये दो मंत्र उच्चारण करने से मेरा जीवन बचा है तो क्यों ना मैं अपना पूरा जीवन मंत्रोच्चारण में लगाऊं। और आगे चलकर वो बहुत बड़े ऋषि हुए जिन्होंने बहुत से ग्रंथ लिखे सुनशेप। तो यहां तक हम पिछले रविवार को सुने। अब विश्वामित्र मुनि वो फिर उन्हें एहसास हुआ कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है या मैं कर क्या रहा हूं, इतना समय बीत रहा है, अभी तक वशिष्ठ मुनि उनको हराना तो दूर की बात है, मैं अपनी तपस्या पूरी नहीं कर पा रहा, जहां जाओ वहां पर कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन आ रहा है। मैं दक्षिण में गया वहां पर वो त्रिशंकु आया, मैं वहां से भागकर यहां पश्चिम में आया, यानी मेरा भांजा आ गया। तो अब उन्होंने निर्णय लिया, चाहे कुछ हो जाए, ये उन्होंने ऐलान किया, चाहे कुछ हो जाए मेरी तपस्या मैं पूरी कर कर रहूंगा। और जैसे ही जब कोई साधक घमंड में, गुरूर में ये ऐलान करता है, तो अवश्य ही माया देवी अब बहुत विशेष प्रकार से ऐसे साधक तपस्वी को तराशती है। तो अभी तक हमारी मूवी ब्लैक एंड व्हाइट चल रही थी, जैसे कहा ना अभी तक हीरोइन नहीं आई है, तो ब्लैक एंड व्हाइट मूवी चल रही है, अब कलर मूवी शुरू होगी। तो इंद्र, उनको जब समझ में आता है कि ये ऐलान विश्वामित्र मुनि ने किया है और ये संकल्प उन्होंने लिया है, तो देवराज इंद्र वो उनके गिरोह की जो अप्सराएं हैं, उन अप्सराओं में से जो विश्व सुंदरी है जिसका नाम है मेनका, तो मेनका को भेजते हैं। टारगेटेड कौन है? टारगेट एक ही, केवल विश्वामित्र मुनि। वो मेनका जो कि अपने सौंदर्य से, जो कि अपनी अदाओं से पूरे स्वर्ग के वासियों को मोहित कर कर रखती थी, यहां तक कि देवराज इंद्र, देवराज इंद्र के लिए एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस था इतने समय के लिए मेनका को स्वर्ग से बाहर भेजना। तो ये मत समझो देवराज इंद्र ने सैक्रिफाइस नहीं किया है, बहुत बड़ा सैक्रिफाइस किया है। मेनका को भेजे। अब यहां विश्वामित्र मुनि अपनी तपस्या में बैठे हुए हैं और मेनका, विश्वामित्र मुनि आंख बंद कर कर तपस्या कर रहे हैं और मेनका जो है वो आकर नाचना प्रारंभ करती है और थोड़ा दूर, तुरंत वो निकट नहीं आती, दूर से वो उसकी जो पायल है, पायल छमछम करते हुए वो नाचना प्रारंभ करती है। दिखने में तो सुंदर और उसके ऊपर वो एक बहुत निपुण नर्तकी भी थी। तो मेनका हमको अगला लेसन सिखाती है, डिस्ट्रैक्शन नेवर हैज एन अगली फेस। अब यदि हम हमारे जीवन में इसको ट्रांसलेट करें तो हम सब के जीवन में माया देवी कोई ऐसे डिस्ट्रैक्शंस भेजती है, विशेष रूप से जब हम ऐलान करते हैं कि हम वैष्णव बनना चाहते हैं, जैसे विश्वामित्र मुनि इन्होंने ऐलान किया कि मैं अब ब्रह्मऋषि बनकर रहूंगा, तो हम ऐलान करते हैं कि हम वैष्णव बनकर रहेंगे, तो माया देवी दोनों कान खोलकर सुनती है हमारा ये ऐलान। और फिर जब हम हमारी साधना भक्ति करने के लिए बहुत उत्साही रहते हैं, उस समय माया देवी ऐसे विक्षेप भेजती है। वो विक्षेप सबसे पहले तो कभी वो उस साधक के लिए बदसूरत नहीं होते, बहुत खूबसूरत होते हैं वो विक्षेप। परंतु जैसे विश्वामित्र मुनि के लिए मेनका दिखने में बहुत सुंदर थी परंतु उनकी तपस्या के लिए वो जहर थी, आपने देखा होगा कि जो परफ्यूम की बॉटल्स होती है सबसे ज्यादा आकर्षक, यदि बॉटल्स में कोई बॉटल्स है तो परफ्यूम की बॉटल्स होती है। अमंगस्ट बॉटल्स द मोस्ट अट्रैक्टिव ऑफ ऑल बॉटल्स आर द परफ्यूम बॉटल्स, दिखने में। तो कोई व्यक्ति यदि किसी परफ्यूम के बॉटल को देखकर इतना ज्यादा लालायित हो जाए कि गटगट पीने लग जाए उसके कंटेंट को, द बॉटल माइट बी वेरी अट्रैक्टिव बट द कंटेंट इज पॉइजनस, माइट बी वेरी फ्रेग्रेंस बट इट इज नॉट सपोज टू बी कंज्यूम्ड इनसाइड। So one should know that what distraction has in its content, वो जानना बहुत जरूरी है। बहुत साल पहले एक भक्त के साथ मैं बेलगाम जा रहा था ट्रेन से, वहां जन्माष्टमी की कृष्ण कथा उन्होंने आयोजित की थी, तो हम लोग ट्रेन से जा रहे थे, तो मैंने देखा ट्रेन में आते ना ये बेचने वाले वेंडर्स, अलग अलग चीजें बेचते हैं, कोई खिलौना बेच रहा है, कोई चाय बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। तो ये डिवोटी, ये स्टूडेंट, तो हम लोग जब कर रहे थे तो भेलपूरी वाला आया, तो वो भेलपूरी की टोकरी लेकर और वो दिखा दिखा कर एडवर्टाइज कर रहा है चिल्ला चिल्ला कर एडवर्टाइज कर रहा है। और ये लोग जो ये वेंडर्स होते हैं बेचने वाले, कुछ विशेष ट्रेनिंग पता नहीं कौन से स्कूल से लेकर आते हैं ये लोग, कि ये जिस टोन में बोलते हैं, हमारे यहाँ वृंदावन कॉलोनी में बहुत वैरायटी है, तो ये जिस टोन में बोलते हैं सबसे पहले तो उसको पता नहीं शायद जानबूझ के ऐसी जटिल भाषा में बोलते हैं कि लोग जिज्ञासु हो जाएं कि बेच क्या रहा है। कि उस बहाने वो लोग देखेंगे कि ये बोल क्या रहा है, ये बेच क्या रहा है। तो हम लोग दोनों जब कर रहे हैं, ये भेल वाला आता है, भेल ऐसे करके लो टोन में शुरू करते हैं लोग। तो ये डिवोटी ये वहां से उठ के दूसरे बोगी में चले गए। तो पहले तो मुझे लगा शायद शौचालय वगैरह गए होंगे, फिर वो भेल वाला चला गया। अब ये लोग ऐसा है कि ये लोग आते जाते रहते हैं, ट्रेन चल रही है इस बोगी से उस बोगी वापस आते हैं कि किसी का माइंड चेंज हो गया इन केस, हाँ किसी को भूख लगी है, ये वापस आया, वापस आया, ये वापस उठ के चले जाते। जब जैसे ये भेल वाला आता ये उठ के चले जाते। तो मैंने पूछा कुछ कनेक्शन लग रहा है इसमें। बोला प्रभु जी क्या बताऊं, ये मेरा वीकनेस है, स्पेशली ये जो वो प्याज वाली भेल है ना, मेरा वीकनेस है, वो फेवरेट है मेरा। तो मैंने कहा हमारे मंदिर में भी भेल बनती है लेकिन उसमें प्याज नहीं डालते ना प्रभु आप, ये जो, और वो क्या बोगी पूरा बंद है तो प्याज की जो भी महक, तो उसके वजह से वो इतना डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, इतना डिस्ट्रैक्ट हो रहा था। तो मैं उसको थोड़ा रियलिटी बताने की कोशिश कर रहा था। तो मैंने उसको कहा कि देखो तुम केवल एक्सटर्नल्स देख रहे हो, कितनी गंदगी में उसने ये सारी चीजें बनाई है पहले वो देखो तुम। प्रभु जी जो भी है, जब भेलपूरी आती है आई बिकम लाइक अ हनी बी नॉट अ फ्लाई, आई ओनली सी द गुड। तो मैंने उसको कहा कि देखो एक बार एक भेलपूरी वाला था, केवल भेलपूरी बेचा करता था वो, और उसने अपना मेनू कार्ड बहुत विशेष बनाया हुआ था, सोमवार भेलपूरी 10 रुपए, मंगलवार स्पेशल भेलपूरी 20 रुपए, बुधवार एक्स्ट्रा स्पेशल भेलपूरी 30 रुपए, ऐसे करके पूरे सोमवार से लेके रविवार तक भेलपूरी के अलग अलग रेट्स। तो एक व्यक्ति बहुत ज्यादा आसक्त इस भेलपूरी से, तो उसने सोचा सोमवार को उसने खाई भेलपूरी, मंगलवार को ये स्पेशल भेलपूरी दे रहा है 20 रुपए की, वो भी टेस्ट करता हूं, तो मंगलवार को आता है भेलपूरी तो वही है। तो उसने पूछा कि ये तुम 20 रुपए चार्ज कर रहे हो लेकिन भेलपूरी तो कल वाली लग रही मुझे। उसने कहा हाँ आज चम्मच धोया हुआ है। तो सोमवार की जो भेलपूरी वो 10 रुपए की, मंगलवार की भेलपूरी स्पेशल है क्योंकि चम्मच धोया हुआ। तो उसने पूछा बुधवार, बुधवार को चम्मच और प्लेट दोनों धोए हुए होते हैं। गुरुवार को जिस चटनी को मैं डालता हूं वो फिल्टर पानी से बनी हुई चटनी होती है, इसलिए गुरुवार को एक्स्ट्रा स्पेशल भेल, ऐसे करके शुक्रवार। तो उसने देखा सबसे ज्यादा रेट संडे वाला, तो संडे वाला डबल एक्स्ट्रा सुपर स्पेशल भेलपुरी 70 रुपए। तो उसने पूछा कि ये क्या है? उस दिन मैं नहाता हूं। तो ये विद्यार्थी मुझे कह रहा था, फाइनली उसने वहां पर वो कुछ ली नहीं भेलपुरी, लेकिन वो भेलपुरी वाला जाने के बाद उसने कहा कि प्रभु भगवान स्पेशली मुझे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए या माया देवी स्पेशली मुझे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए और किसी वेंडर को नहीं भेजी, ये भेलपुरी वाला। और वो जानबूझ के इनके सामने वो प्याज एकदम आर्टिस्टिक तरीके से काट काट के दूसरों को बना बना के हिला हिला के इसको दिखा दिखा के तो मैंने कहा अगला लेसन क्या सिखा रही है, डिस्ट्रैक्शन इज नेवर हैविंग एन अगली फेस, डिस्ट्रैक्शन इज वेरी सब्जेक्टिव। जैसे हमारे श्रवण और कीर्तन में या श्रवण और जप में दो, हमारे माइंड कंट्रोल सेमिनार में मैं बताता हूं कि दो जो विशेष अवरोध आते हैं, विक्षेप और आलस्य या लय, तो विक्षेप वो हर समय केवल उसी का होगा जिसमें हम आसक्त रहेंगे। तो विक्षेप या डिस्ट्रैक्शन, विक्षेप होता है भोगों में आसक्ति के कारण, और आलस्य आता है श्रवण और जप के समय भगवान में निरासक्ति के कारण। तो भोगों में आसक्ति, भगवान में निरासक्ति, ये है विक्षेप और लय। इसलिए जब अर्जुन ने वो प्रसिद्ध श्लोक छठे अध्याय का भगवान को सुनाया, चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुर इव सुदुष्करम्। इसके पश्चात कि मन इतना चंचल है, इतना ज्यादा प्रमाथी है, बलवान है, दृढ़म इत्यादि इत्यादि, तो भगवान इसके अगले श्लोक में कहते हैं, असंशयम तु महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। दो चीजें अर्जुन तुम्हें करनी है केवल, वैराग्य और अभ्यास। तो वैराग्य विक्षेप को दूर करता है, क्योंकि विक्षेप, जैसे मैंने कहा, विक्षेप जो है, हम डिस्ट्रैक्ट यदि होते हैं श्रवण करते समय, जप करते समय, तो केवल उन्हीं वस्तुओं से या व्यक्तियों से या स्थान जो भी कुछ से विक्षेपित होंगे जिनके प्रति हमारे अंदर आसक्ति है। यू विल नेवर बी डिस्ट्रैक्टेड बाय चिंपैंजीज ऑफ अफ्रीका। हाँ, सब्जेक्टिवली समवन is having liking towards chimpanzees of Africa will definitely be distracted. But generally, जब करते समय आप miss नहीं कर रहे हो, chimpanzee, Africa के chimpanzee को miss कर रहा हूँ। लेकिन हम distract होते हैं उन भोगों से जिन भोगों में हमारी आसक्ति है। और यहां पर यह बताया गया है कि जैसे विश्वामित्र मुनि इतने समय से, बहुत समय हो गया था विश्वामित्र मुनि को, कि विश्वामित्र मुनि के जीवन में कोई सुंदर स्त्री नहीं आई थी, इसलिए विश्वामित्र मुनि के लिए यह बहुत टाइमली डिस्ट्रैक्शन था। Not just very subjective, but very timely distraction. और फिर विश्वामित्र मुनि वो आंख खोलते हैं। सबसे पहले तो अपने कानों से नूपुर की आवाज सुनाई देती है। जब नूपुर की आवाज सुनाई देती है तो तुरंत उनके अंदर एक इमेजिनेशन शुरू हो जाता है। कैसा इमेजिनेशन शुरू हो जाता है कि ये इस जंगल में पायल या नूपुर की आवाज, वो भी नर्तन करते हुए, ये कोई ऋषि मुनि तो नहीं हो सकता। ऋषि मुनि पायल पहन के तपस्या नहीं कर रहा होगा यहां पर। तो तो वो पायल की आवाज सुनते ही विश्वामित्र मुनि के मन में वो भोग इच्छा, उसका बीज बोया जाता है. सो इट बिगिंस फ्रॉम हियरिंग अबाउट द सेंस ग्रेटिफिकेशन. दिस इज द सीक्वेंस. फिर उन्होंने आंख खोलकर जब देखा तो मेनका के सौंदर्य को देखकर अब जो उन्होंने कल्पना की थी आंख खोलने से पहले, कई गुना ज्यादा मेनका उससे सुंदर प्रतीत हुई. तो ये भौतिक मन ये कैसा है कि जो कल्पना करता है, और माया देवी यदि कल्पना से ज्यादा delivers more than promised, तो हमें क्या लगता है? This is God ordained. भगवत इच्छा है ये. That's the biggest illusion of Maya. When she convinces you to think that it is sent by God, it is God sent. तो विश्वामित्र मुनि अब फिर फेल होते हैं, और विश्वामित्र मुनि मेनका के साथ कितना समय बिता देते हैं? 10 साल. यहां पर पहले तो केवल बेचारे त्रिशंकु और सुनक्षेप कुछ अवधि के लिए विश्वामित्र मुनि को डिस्ट्रैक्ट किए थे, अब मेनका ने विश्वामित्र मुनि को 10 साल तपस्या से अलग कर दिया. तो विश्वामित्र मुनि मेनका के साथ 10 साल विहार कर रहे हैं, और 10 साल के पश्चात अपने होश संभालते हैं. सोचिए अकल ठिकाने कब आई? 10 साल बाद. तो 10 साल के बाद वो मेनका से पूछते हैं, टाइम क्या हुआ है? तो मेनका भी जानती थी. मेनका ने ये नहीं कहा कि 9:30 हैं, 10 बजे. मेनका ने कहा 10 साल बीत गए हैं. क्योंकि मेनका, सोचो देवराज इंद्र ने भी कितना बड़ा सैक्रिफाइस किया है, 10 साल, 10 साल स्पेयर किया. तो यहां विश्वामित्र मुनि अब 10 साल मेनका के साथ विहार करने के पश्चात जब अपने होशो हवास में आते हैं, तो विश्वामित्र मुनि पुनः कोसने लगते हैं, और फिर उनका दृढ़ संकल्प जाग उठता है. परंतु हमें वो लेसन सिखा दिए. बहुत इंटरेस्टिंग ये अब एक मुद्दा है, आप लोग ध्यान से इस पे गौर कीजिएगा. द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिविटी, कि यहां विश्वामित्र मुनि, उनको बिल्कुल कोई अंदाजा ही नहीं कि इंद्रिय भोग में 10 साल बीत गए. ये भौतिक संसार में जो माया देवी का प्रकोप है हम सब के ऊपर, आवरणात्मिका शक्ति, प्रक्षेपात्मिका शक्ति, ये जो दोनों शक्तियां हैं, पहले आवरण डालती है हमारे ऊपर और फिर लात मारती है, लात घुसे. तो ये दोनों जो शक्तियां हैं, ये दोनों शक्तियां इस प्रकार से काम करती हैं एक बद्ध जीव के ऊपर कि बद्ध जीव, उसे समझ नहीं आता कि सही क्या है, गलत क्या है, सही समय क्या है, गलत समय क्या है, सही स्थान क्या है, गलत स्थान क्या है. Everything is so illusory because everything is relative. The concept of relativity. अब देखिए ये concept of relativity में हम अलग अलग मुद्दे लेंगे, जिसके अंदर जो हमने पिछले कुछ लेसन्स भी जो लिए कि हाउ डिस्ट्रैक्शन इज सब्जेक्टिव, वैसे हर एक साधक के जीवन में, हर एक जीव के जीवन में ये सारे जो मुद्दे हैं जो अभी हम चर्चा करने वाले हैं, वो सब थियोरी ऑफ रिलेटिविटी से कनेक्टेड हैं। जैसे कि टाइम, सबसे पहले यदि हम समय को लें तो देखो, जब कोई सिनेमा देखने थिएटर जाता है तो पता ही नहीं चलता है 3 घंटे कैसे बीत गए, पता ही नहीं चलता है। और 3 मिनट प्रवचन में 3 बरस जैसे लगते हैं। ऐसा नहीं है कि जब आप सिनेमा देखने जा रहे हो तो घड़ी बहुत फास्ट घूम रही है, समय वही है, समय का प्रवाह वही है, स्पीड रफ्तार वही है, वही घड़ी। जब हम प्रवचन में बैठे होते हैं तो घड़ी 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 को देखते हैं, जब करते समय कई बार हमको लगता है कि हम कई अरसे से बैठे हुए हैं और घड़ी की ओर देखते हैं तो 5 ही मिनट हुए हैं। एक बार रात के 12 बजे पति जो है वो बालकनी में जाकर बैठ गया तो पत्नी परेशान कि रात के 12 बजे मेरा पति बालकनी में क्यों बैठा है। तो पत्नी मुंह धोकर जाती है पूछने के लिए तो पति एकदम गंभीर मुद्रा में बालकनी में बैठा हुआ, उसकी एक आंख से, केवल एक आंख से आंसू टपक रहा है। पत्नी पूछती क्या हुआ, पति कहता है याद है आज ही का वो दिन था 20 साल पहले जब हम पार्क में बैठे हुए थे, तुम्हारे पिताजी हमें पकड़ लिए थे। तो पिताजी किसके, लड़की के, वो एक जेलर थे तो उन्होंने बंदूक निकाली थी और मेरे कनपट्टी पे बंदूक लगाकर कहा था या तो मेरी बेटी से शादी कर या 20 साल की जेल उसकी सदा भुगत। तो वो याद कर रहा है उस दिन को, ठीक 20 साल पहले आज का ही वो दिन था जब तुम्हारे पिताजी ने वो गन पॉइंट पर मुझे वो 2 बातें कही थी, फिर दूसरे आंख से आंसू टपका। तो ये आंसू पहुंचने लगी, मुझे याद है, मुझे याद है, बहुत अच्छी से याद है, तुम रो क्यों रहे हो। लेकिन तो ये कहता है मैं रो इसलिए रहा हूं कि आज मैं रिहा हो गया होता। तो 20 साल कैसे बीत जाते हैं, 3 घंटे कैसे बीत जाते हैं, 3 मिनट कैसे बीत जाते हैं। टाइम इज रिलेटिव। कल 15 अगस्त है तो 15 अगस्त के संदर्भ में एक बार एक व्यक्ति, उसे रास्ते में अल्लाहदीन का चिराग मिलता है। सुने ना अल्लाहदीन का चिराग बहुत फेमस है, उसको रगड़ो तो अल्लाहदीन जीनी आता है आपकी ख्वाहिशें पूरा करने। तो अल्लाहदीन का चिराग उसको दिखता है, एकदम वैसा ही अल्लाहदीन का चिराग दिखने वाला, उसको रगड़ता है, होता क्या है, फट जाता है और उधर ऊपर लिखा हुआ होता है लावारिस वस्तु जानलेवा साबित हो सकती है। तो वो बम था, तो फाइनली इसकी मैयत में बोला गया कि भाई समय बदल गया है, आजकल अल्लाह दिन नहीं मुजाहिदीन, मुजाहिदीन चिराग रखते हैं रास्ते पर। तो ध्यान से लावारिस वस्तुओं को उठाना, पता नहीं अल्लाह दिन का निकले या मुजाहिदीन का निकले। टाइम इज रिलेटिव। फिर स्थान। अब देखिए, एक ही स्थान, हमारे हाल ही के एक स्टूडेंट प्रोग्राम में मैं कह रहा था जम्मू तवी एक्सप्रेस, तो जम्मू तवी एक्सप्रेस में एक ही बोगी में एक आर्मी का जवान वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए जा रहा है। कहां जा रहा है? कश्मीर। और उसी बोगी में एक दंपति हनीमून मना रहे कश्मीर जा रहे हैं। सेम ट्रेन, सेम बोगी, सेम डेस्टिनेशन, परंतु दोनों की विचारधारा क्या है? उस आर्मी के जवान को पूछो कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, वो ही नहीं कहेगा कि कश्मीर घूमने जा रहा हूं। वो क्या कहेगा? अपनी जान हथेली पर ले जा रहा हूं। वो दंपति को पूछो, वो भी यही कहेगा, जान हथेली पर ले जा रहा हूं, उसके लिए जान कुछ और है, आर्मी वाले के लिए जान कुछ और है, दोनों जान ही है। परंतु दोनों का मकसद विपरीत। सेम प्लेस कश्मीर, बट टू पीपल गोइंग विद डिफरेंट कॉन्शियसनेस। सो प्लेस इज रिलेटिव। देन सिचुएशन, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि अब देखो सिचुएशन, एक ही सिचुएशन हम लेंगे, मृत्यु। पता नहीं मुझे ये मृत्यु का कॉन्सेप्ट मेरे टीनेज अवस्था से बहुत फैसिनेटिंग लगा है। तो मृत्यु ये एक ऐसी सिचुएशन है हम सब के जीवन में आने वाली है, और हम सब ने अन्यों के जीवन में देखा है। मैंने अपने आंखों के सामने मेरे पिताजी की मौत देखी जब मैं 14 साल का था। पता नहीं शायद उस समय से मेरे लिए ये मृत्यु का कॉन्सेप्ट बहुत फैसिनेटिंग रहा है। मृत्यु इतना फैसिनेटिंग रहा है कि हमारा एक फील्ड क्राफ्ट ट्रेनिंग कैंप था वॉर सिमुलेशन का, जहां पे जंगल में जाकर आपको वॉर ट्रेनिंग दी जाती थी। तो मैं और मेरा कलीग, अभी जैसे हमारे जन्माष्टमी के कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, तो वैसे ही हमारे उस पूरे एक महीने के कैंप में एक दिन था कल्चरल इवेंट, जिसके अंदर हम सब ट्रेनीज को, कैडेट्स को कुछ ना कुछ प्रेजेंट करना है। तो मैं और मेरा कलीग, हम दोनों का सिलेक्शन एक साथ हुआ था एज अ फाइटर पायलट। तो हमने एक बहुत अजीबोगरीब कॉन्सेप्ट के ऊपर नाटक लिखा, और फिर आपको करना भी है, लिखना भी है और करना भी है, चाहे आप गा रहे हो, चाहे नाटक कर रहे हो, कुछ भी प्रेजेंटेशन। तो ये नाटक मैंने लिखा था मौत के ऊपर, मृत्यु के ऊपर लिखा था। और इसका प्लॉट क्या था? प्लॉट ये था कि दो मुर्दे कब्रिस्तान में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, है ना? बहुत अजीबोगरीब ये कॉन्सेप्ट था। तो दो मुर्दे कब्रिस्तान के, अब सबसे पहले तो शुरुआत हमने की, तो मैं एक मुर्दा बना था, ये मेरा कलीग एक और मुर्दा बना था, तो हम लोग दोनों अब उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। तो फिर सबसे पहले मैयत में, जैसे शव यात्रा होती, तो मैयत में दोनों मुर्दे जा रहे हैं कब्रिस्तान की ओर और उनके रिश्तेदार उनको लेकर जा रहे हैं, तो उठाए हुए ले जा रहे हैं दोनों मुर्दों को। तो एक मुर्दा दूसरे मुर्दे से बात कर रहा है, दोनों को ले जाया जा रहा है परंतु एक मुर्दा दूसरे मुर्दे से बात कर रहा है, पूछता है कि तुझे क्या लगता है ये सारे जो रिश्तेदार रो रहे हैं, तुझे क्या लगता है ये सच में तुझसे प्यार करते हैं? क्या ये सच में तेरे विरह में हैं? तो अब मैं, मेरी बारी थी जवाब देने की, तो मैंने जवाब दिया कि ये जो मेरी मैयत में मेरी मुर्दा लाश को देखकर जो रो रहे हैं, यदि अभी मैं उठ खड़ा हो जाऊं तो कमबख्त जीने न देंगे। अभी यदि मैं उठ खड़ा हो जाऊं तो कमबख्त ये जीने न दें। ये है इस भौतिक संसार का अटल सत्य। फिर हम लोग को कब्रिस्तान ले जाया गया और वहां पर अब कब्रिस्तान, कब्र के अंदर दोनों वार्तालाप कर रहे हैं मौत के विषय में, इस पूरी दुनिया के विषय में। तो ये मुर्दा मुझसे पूछता है कि भाई कौन सी जगह अच्छी है, बाहर अच्छा था या कब्र के अंदर, सुकून कहां मिल रहा है? पता नहीं, मुझे ये सब याद आ रहा है अभी। तो फिर उत्तर में एक पद याद आया जो कि लिखा हुआ था उस समय, तो वहां पर सुनाया हमने। ये महलों ये तख्तों ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये महलों ये तख्तों ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। तो उत्तर में ये कहा कि कब्र के बाहर अगर दुनिया मिल भी गई, जो इंसान के दुश्मन हैं, जो दौलत के भूखे हैं, जो यदि तुम उठ खड़े हो जाओ फिर से जीने के लिए इनके साथ तो तुम्हें जीने ना दें, इससे अच्छा तो ये कब्र है, यहां ज्यादा सुकून है, कम से कम यहां पर इंसान के दुश्मन नोचने के लिए तो नहीं। इसलिए मैं इसके विषय में सोच रहा था, वही मौत। चलो कल्पना करो कि एक खानदान है और उस खानदान में पिछले 500 साल से कोई मरा नहीं। इमेजिन करो, हम लोग रोते हैं ना, सोडून गेला कशाला गेला, हाँ आमसा काय व्हायचं आता, ऐसे रोते हैं ना। तो कोई भी भाषा हो, हाँ सब भाषा में विलाप करते हैं। तो कल्पना करो कोई ऐसा खानदान, 500 साल हो गया कोई मरा ही नहीं है, तो जो दादाजी हैं वो 450 साल के हो गए हैं, पोता है वो 375 साल का है। सोचो अगर उनका 2 BHK का मकान है तो रहने के लिए जगह नहीं होगी, तो भगवान से बोले किसी को तो मारो। तो कितनी अजीबोगरीब चीज है मौत, कि हम जिसके लिए विलाप करते हैं वो यदि भगवान रोक दें तो उसके लिए विलाप करेंगे। तो फिर प्रश्न ये है कि क्या मौत अच्छी है या बुरी है? उस स्मशान घाट में उस जब मुर्दे को लाश को ले जाया जाता है तो सभी विलाप कर रहे हैं, लाश को ले जाते हुए अब जलाने वाले हैं, परंतु उस स्मशान भूमि पे जो काम करने वाले कर्मचारी हैं वो जैसे ही देखते हैं कि एक और लाश आई, उनके ऊपर तो मुस्कान, वो तो खुश होते हैं, एक और लाश और पैसे। जितनी लाश आती है वो कर्मचारी खुश होते हैं, जो ले जा रहे हैं वो दुखी हैं, पता नहीं शायद दुखी हैं या वो भी खुश हैं। Why? Because it is all relative. एक बार एक व्यक्ति लाइब्रेरी गया किताब लेने के लिए, लाइब्रेरियन से कहता है आत्महत्या के ऊपर पुस्तक है क्या? आत्महत्या के ऊपर कैसे किया जाए? तो लाइब्रेरियन पूछता है किसके लिए चाहिए? तो कहता है मेरे लिए चाहिए, मुझे चाहिए पुस्तक। तो लाइब्रेरियन बोलता है वो तो ठीक है, लौटाएगा कौन? तो ये है भौतिक संसार, तू जा मर, बुक लौटा के जाना मरने से पहले। ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, सब जगह पर। अब देखो मनुष्य समाज के अंदर हमने जो रीति रिवाज और ये ढोंग ढकोसला इतना सब कुछ कर रखा है कलयुग में विशेष रूप से, सो एवरीथिंग बिकम्स रिलेटिव। एक बीमार व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है परेशान, डॉक्टर खुश, क्योंकि उसकी बीमारी से इसकी आमदनी चलती है। एवरीथिंग इज रिलेटिव इन दिस मटीरियल वर्ल्ड। पर्सन, कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिविटी इन रिगार्ड्स टू पर्सन। वही पुलिस, वर्दीधारी पुलिस, उसको जब एक चोर देखता है तो उसके मन में डर, भय। उसी वर्दीधारी पुलिस को जब एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन देखता है, कानून परस्त जो देखता है, तो वो कैसे देखता है? सेंस ऑफ सिक्योरिटी उसके अंदर आती है। पर्सन इज द सेम बट कॉन्शियसनेस डिफर्स, हु इज लुकिंग एट दैट पर्सन। फिर ऑब्जेक्ट, वही ऑब्जेक्ट, जैसे फर्श पर भिजा हुआ मार्बल और ऑल्टर पर जो भगवान जिस धातु से बने हुए हैं वो भी है मार्बल, हो सकता है एक ही खान से आए हुए, मार्बल की एक ही खान से आए हुए,